पृष्ठ संख्या 515 अध्याय 19 चित्रित धूसर पात्र परंपरा। प्राचीन भारत की प्रथम नगरीय सिंधु सभ्यता के लगभग 1500 ईसा पूर्व में अवसान के पश्चात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐतिहासिक काल के बीच में देश के पुरातात्विक क्षितिज पर किन संस्कृतियों का उदय हुआ तथा उनके द्वारा किन भौतिक उपादानों का निर्माण हुआ। 20वीं शताब्दी के 5वें एवं 6ठे दशक में भारतीय पुरातत्व की यह एक गहन समस्या रही है। भारतीय पुरातत्व में इस काल को अंधकार युग की संज्ञा प्रदान की जाती थी। चित्रित धूसर पात्र परंपरा की खोज से इस समस्या पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर कस्बे के पास स्थित अहिच्छत्र नाम के टीले के सन 1940-44 के हुए उत्खनन से इस पात्र परंपरा के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हुई, किंतु उस समय इसके पुरातात्विक महत्व को ठीक से नहीं आंका जा सका। हस्तिनापुर, कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती, तिलपत तथा इंद्रप्रस्थ आदि अनेक पुरास्थलों पर इस पात्र परंपरा की कालांतर में प्राप्ति ने भारतीय पुरातत्व में चित्रित धूसर पात्र परंपरा को एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। नामकरण चित्र धूसर पात्र परंपरा पेंटेड ग्रे वेयर नाम से ध्वनित होता है कि यह एक ऐसी पात्र परंपरा है जिसके पात्रखंड धूसर अथवा सलेटी रंग के हैं और जिनके ऊपर काले रंग से चित्रण अभिप्राय संजोए गए हैं। यद्यपि इस पात्र परंपरा का रंग प्रधानतः सलेटी ही मिलता है, तथापि काले तथा चॉकलेट रंग के नमूने भी इसमें पाए जाते हैं। प्रसार चित्रित धूसर पात्र परंपरा का प्रसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी गंगा घाटी में विशेष रूप से मिलता है। उसका प्रसार उत्तर में जम्मू कश्मीर प्रदेश के जम्मू क्षेत्र में स्थित मांडा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के उज्जैन तक मिलता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लखियोपीर इसकी पश्चिमी सीमा है। नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोट तक इसके पात्रखंड मिलते हैं। यद्यपि चित्रित धूसर पात्र परंपरा के पात्रखंड कौशाम्बी, सोहगौरा तथा वैशाली से भी मिले हैं, तथापि इन पुरास्थलों से प्राप्त ठीकरों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व दिशा में इस पात्र परंपरा का प्रचलन अपेक्षाकृत बाद में हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र के पुरास्थलों पर इन पात्रों की संख्या कम है। वे बनावट में मोटे हैं और उन पृष्ठ संख्या 516 पर चित्रण अभिप्राय भी प्रायः कम मिलते हैं। यही बात उज्जैन से प्राप्त चित्र धूसर पात्र खंडों के संबंध में भी कही जा सकती है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस पात्र परंपरा के निर्माता तथा प्रयोक्ता संभवतः पश्चिम से उत्तर पूर्व एवं दक्षिण की ओर अग्रसर हुए होंगे। पात्र प्रकार चित्र धूसर मृदभांड परंपरा के पात्र सुंदर, चिकनी एवं मसलिन मिट्टी के बने हुए प्रतीत होते हैं। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह गूंथ कर तैयार किया जाता था। बहुसंख्यक पात्र चाक पर बने हुए हैं, यद्यपि हाथ से बने हुए उदाहरण भी यदाकदा उपलब्ध हो जाते हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों में कटोरे और थालियां उल्लेखनीय हैं। पंजाब के रोपड़ जिले से प्राप्त लोटा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रकार है। इस प्रकार यह पात्र परंपरा भोजनालय से संबद्ध पात्र परंपरा प्रतीत होती है। इधर हाल में उत्खनित पुरास्थलों से कुछ अन्य पात्र प्रकार भी प्रकाश में आए हैं। चित्र एक चित्रित धूसर पात्र परंपरा थाली, कटोरा एवं लोटा, सौजन्य बीबी लाल 1964। इस प्रकार के बर्तनों पर मिलने वाले चित्रण अभिप्रायों में खड़ी तथा पड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, बिंदु समूह, संकेंद्रीय वृत्त, अर्धवृत्त, सिग्मा एवं स्वास्तिक आदि प्रमुख है। चित्रण अभिप्राय अधिकांशतः बर्तनों की बाहरी सतह पर मिलते हैं, लेकिन यदाकदा भीतर बाहर दोनों तरफ भी अलंकरण मिलते हैं। ये अलंकरण सामान्यतः हल्के काले रंग मैट ब्लैक से बनाए गए हैं, परंतु कभी कभी कत्थई रंग का भी प्रयोग किया गया है। बर्तनों के थोड़ा सूखने पर तथा पकाने के पहले अलंकरण सजोए जाते थे। बर्तनों को एक विशेष प्रकार के आवे पृष्ठ संख्या 517 रेखाचित्र 2 चित्रित धूसर पात्र परंपरा प्रमुख अलंकरण अभिप्राय सौजन्य बीबी लाल 1964 में पकाया जाता था, जिसका तापमान क्रमशः कम होता जाता था। बर्तन सम तापमान पर नहीं पक पाते थे, इसलिए ये प्रायः लाल रंग के न होकर धूसर रंग के हो जाते थे। संबद्ध पात्र परंपराएं। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के साथ साथ अनलंकृत धूसर पात्र परंपरा, प्लेन ग्रे वेयर, कृष्ण लोहित पात्र परंपरा, कृष्ण लेपित पात्र परंपरा, ब्लैक स्लिप्ड तथा लाल पात्र परंपरा के भी दर्शन होते हैं। चित्रित धूसर पात्र परंपरा विशिष्ट एवं भोजनालय से संबंधित पात्र परंपरा टेबल वेयर थी। अन्य पात्र परंपराएं दैनंदिन कार्यों के उपयोग में आती रही होंगी। घड़े, मटके, तसले, किनारेदार हांडी, कटोरे, मर्तबान तथा चषक आदि प्रमुख पात्र प्रकार इन उपर्युक्त पात्र परंपराओं में मिलते हैं। कालानुक्रम। चित्रित धूसर पात्र परंपरा का कालानुक्रम पुरातात्विक और रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इस पात्र परंपरा को दो उपकालों में विभाजित किया गया है। इस पात्र परंपरा के तिथि क्रम में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल द्वारा हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त पृष्ठ संख्या 518 प्रमाणों का विशेष महत्व है। लाल ने निम्नलिखित आधारों पर चित्रित धूसर पात्र परंपरा के कालानुक्रम को निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक, चित्रित धूसर पात्र परंपरा के स्तरों में लोहे का अभाव। दो, चित्रित धूसर मृदभांड एवं एनबीपी पात्र परंपरा के मध्य अंतराल का होना। तीन, एनबीपी की आरंभिक तिथियां। और चार, चित्रित धूसर पात्र परंपरा का महाभारत के कथानक से संबद्ध पुरास्थलों से मिलना। आरंभ में हस्तिनापुर के उत्खनन से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के स्तरों से लौह उपकरण नहीं मिले थे। ऐसे ही परिणाम पंजाब के रोपड़ के उत्खनन से भी प्राप्त हुए थे। इस आधार पर लाल ने इस पात्र परंपरा की लौह युग से पहले रखने का आग्रह किया था। मार्टिमर व्हीलर ने भी अपनी पुस्तक अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान में इसे कांस्य युगीन ब्रोंज एज पात्र परंपरा कहा था। नोह, आलमगीरपुर, अल्लापुर, अहिच्छत्र, भरतपुरा, अतरंजी खेड़ा और कौशाम्बी आदि के उत्खननों से इस पात्र परंपरा के स्तरों से कालांतर में लोहे के उपकरण मिले। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया है कि यह लौह युगीन पात्र परंपरा है। ऐसी स्थिति में इसकी प्राचीनता को इस आधार पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। लाल ने जिस समय हस्तिनापुर का उत्खनन कराया था, उस समय सैंधव पात्र परंपरा और एनबीपी पात्र परंपरा के अतिरिक्त अन्य मृदभांड पात्र परंपराओं के विषय में भारतीय पुराविद को बहुत कम जानकारी थी। लाल ने अपने अन्वेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि सतलज, सरस्वती तथा घग्घर के मैदान में सैंधव सभ्यता की समाप्ति के बाद जो लोग निवास कर रहे थे, वे लोग निश्चित रूप से चित्रित धूसर पात्र परंपरा का प्रयोग करते थे। इसका आशय यह निकाला गया है गया कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा निश्चित रूप से सैंधव पात्र परंपरा के बाद की है। जिस समय भारत में चित्रित धूसर पात्र परंपरा का उद्भव हुआ, उस समय तक सैंधव सभ्यता का अंत हो चुका था। अमलानंद घोष के अनुसार पुरातत्व संबंधी उपलब्ध साक्ष्य यही संकेत करते हैं कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोग सैंधव सभ्यता के संपर्क में कभी नहीं आए। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित तरखानवाला, डेरा और चक, 86 आदि स्थानों से जो प्रमाण मिले थे, उनसे यही विदित हुआ कि सैंधव सभ्यता के लोगों का चित्रित धूसर पात्र परंपरा से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ था। रोपड़ और आलमगीरपुर नामक पुरास्थलों पर हुए उत्खननों से भी यही विदित हुआ। पृष्ठ संख्या 519 की चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोगों ने यद्यपि सैंधव सभ्यता के टीलों पर अपने आवास बनाए थे, किंतु उनके पास बगल में न कि ठीक उनके ऊपर। चित्र 3, हस्तिनापुर उत्खनन का एक दृश्य। सौजन्य बीबी लाल 1954-55। हस्तिनापुर के चित्रित धूसर पात्र परंपरा के कालानुक्रम के लिए लाल ने उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के तिथि क्रम को भी एक आधार बनाया था। लाल के अनुसार तक्षशिला, कौशाम्बी तथा अहिच्छत्र के साक्ष्यों के आलोक में एनबीपी की प्राचीनतम सीमा रेखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की जा सकती है। हस्तिनापुर में एनबीपी पात्र परंपरा के आरंभ और चित्रित दूसरे पात्र परंपरा के अंत के बीच में समय का अंतराल था। एनबीपी पात्र परंपरा और धूसर पात्र परंपरा के सांस्कृतिक उपादानों में अत्यधिक अंतर के आधार पर लाल ने इस पृष्ठ संख्या 520 व्यवधान के लिए लगभग 200 वर्ष का समय निर्धारित किया था। हस्तिनापुर में चित्रित धूसर पात्र परंपरा का अंत इस प्रकार 800 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया गया है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के स्तरों का औसत निक्षेप 1.50 से 2.10 मीटर तक मिला है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के इस समग्र सांस्कृतिक जमाव के लिए 300 वर्षों की अवधि अनुमानित की गई। इस प्रकार हस्तिनापुर में चित्रित धूसर पात्र परंपरा की तिथि 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य निश्चित की गई। लाल का मत है कि इस पात्र परंपरा के प्रयोक्ता सरस्वती दृषद्वती की घाटियों में पहले आए तथा सतलज यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में बाद में पहुंचे, इसलिए उत्तरी राजस्थान में इसकी प्राचीनतम सीमा रेखा 1200 ईसा पूर्व के आसपास खींची जा सकती है। हस्तिनापुर में चित्रित धूसर पात्र परंपरा का अंत गंगा की एक भयानक बाढ़ के परिणाम स्वरूप हुआ। लाल ने पौराणिक अंत साक्ष्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि जब हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ से विनष्ट हो गया, तब निचक्षु नामक शासक ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से हटाकर कौशाम्बी में स्थापित किया। गंगया अपहृते अपि अस्मिन् नगरे नागत साहवये त्यक्त्वा निचक्षुर्नगरं कौशाम्ब्यां स निवत्स्यति। परीक्षित के बाद निचक्षु पांचवे कुरुवंशीय शासक थे। कौशाम्बी की के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध शासक उदयन के 18 पीढ़ियों पहले निचक्षु हुए थे। चित्र 4, हस्तिनापुर, गंगा की बाढ़ का दृश्य, सौजन्य बीबी लाल, 1954-55। पृष्ठ संख्या 521। पुराणों के मर्मज्ञ विद्वान पाजीटर महाभारत युद्ध की तिथि लगभग 950 ईसा पूर्व मानते हैं। इस तिथि के आधार पर ही लाल ने उदयन से निचक्षु तक के 18 शासकों के शासन काल की औसत अवधि लगभग 18 वर्ष मानकर हस्तिनापुर की बाढ़ को लगभग 800 ईसा पूर्व की घटना बतलाया है। लाल का अभिमत है कि महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, इंद्रप्रस्थ, काम्पिल्य, कुरुक्षेत्र, बैराट और मथुरा आदि पुरास्थलों के निचले स्तरों से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के मिलने का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि इन सभी पुरास्थलों पर एक ही संस्कृति के लोग निवास करते थे। ये सभी पुरास्थल एक जैसी समकालीन संस्कृति से संबद्ध माने जा सकते हैं। इस बात की संभावना है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा के ही किसी चरण से महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों के युद्ध का कोई संबंध रहा हो। रोपण में चित्रित धूसर पात्र परंपरा की तिथि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लगभग 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से भी चित्रित धूसर पात्र परंपरा के कालक्रम पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उत्खाता आरसी गौड़ के अनुसार इस पुरास्थल पर विभिन्न संस्कृतियों का एक अविच्छिन्न क्रम मिलता है। अतरंजी खेड़ा में एनबीपी पात्र परंपरा के पहले 3 पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रमाण मिले हैं। 1, प्रथम सांस्कृतिक काल गैरिक मृदभांड, 2, द्वितीय सांस्कृतिक काल कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा, 3, तृतीय सांस्कृतिक काल चित्रित धूसर पात्र परंपरा। अतरंजी खेड़ा में चित्रित धूसर पात्र परंपरा के काल का जमाव 80 सेमी से 2.20 मीटर तक मिला है। इस संपूर्ण जमाव को 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। 1, निचला उपकाल, 2, मध्यवर्ती उपकाल, 3, ऊपरी उपकाल। इस आधार पर यहाँ पर चित्रित धूसर पात्र परंपरा के प्रचलन का प्राचीनतम समय 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। कौशाम्बी के उत्खनन से भी चित्रित धूसर पात्र परंपरा का पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर तिथिक्रम निर्धारित करने में कुछ सहायता मिली है। यहाँ पर विभिन्न पुरातात्विक सांस्कृतिक कालों के मध्य एक निरंतरता मिलती है। कौशाम्बी में चित्रित धूसर पात्र परंपरा के काल को द्वितीय संप्रति तृतीय सांस्कृतिक काल कहा गया है। कौशाम्बी में एनबीपी पात्र परंपरा के आरंभ का समय 605 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जिसको चित्रित धूसर पात्र परंपरा की समाप्ति की तिथि माना जा सकता है। कौशाम्बी में चित्रित धूसर पात्र परंपरा की तिथि 885 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व से लेकर 605 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। रेडियो कार्बन तिथियां कई उत्खनित पुरास्थलों में से चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित स्तरों की रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। इन पुरास्थलों में हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा, अरिक्षेत्र तथा नोह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कार्बन तिथियां इस संस्कृति की कालावधि को 800 से 400 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित करती हैं। पृष्ठ संख्या 522। इस उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा का तिथि क्रम विवादपूर्ण है। इस संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। उपलब्ध तथ्यों के आलोक से इसका कालानुक्रम 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य प्रस्तावित किया जा सकता है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा का उद्भव। चित्रित धूसर पात्र परंपरा कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। लाल को सरस्वती दृषद्वती की घाटियों से लेकर ऊपरी गंगा घाटी तक हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति दृष्टिगोचर हुई वह चित्रित धूसर पात्र परंपरा की थी। उस समय तक केवल हड़प्पा सभ्यता की पात्र परंपरा और एनबीपी पात्र परंपरा की पूर्ववर्ती किसी अन्य पात्र परंपरा के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में इस पात्र परंपरा के उद्भव के लिए भारत की सीमा के बाहर स्थित पश्चिमी क्षेत्रों की ओर ध्यान जाना अस्वाभाविक नहीं था। यूनान के थेसली क्षेत्र में स्थित सानी, संगली, जेरिला और ईरान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों आदि से भारत की चित्रित धूसर पात्र परंपरा की तरह के कुछ पात्र मिले थे। इस आधार पर बीबी लाल ने यह संभावना व्यक्त की थी कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा के निर्माता भारत में बाहर से आए रहे होंगे। प्रश्न यह है कि क्या उन पुरास्थलों से मिलने वाले पात्र चित्रित धूसर पात्र परंपरा से मेल खाते हैं? क्या दोनों क्षेत्रों के पात्र प्रकार और चित्रण अभिप्राय एक ही तरह के हैं? क्या जिस परिवेश में चित्रित धूसर पात्र परंपरा भारत में मिलती है उसी परिवेश में भारत भी मिलती है, उसी परिवेश में बाहर भी मिलती है? स्पष्टतः इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। अतः पुरातत्वविदों को अब यह कहने में संकोच होता है कि इस संस्कृति के निर्माता भारत में बाहर से आए थे। कतिपय उत्खनन चित्रित धूसर पात्र परंपरा के उद्भव की समस्या पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। चित्रित धूसर पात्र परंपरा प्राचीन मध्य देश की एक विशिष्ट मृदभांड परंपरा प्रतीत होती है। अतरंजी खेड़ा तथा नोह के उत्खननों से गैरिक मृदभांडों एवं चित्रित धूसर पात्र परंपराओं के मध्यवर्ती स्तरों से कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा के संबंध में पहले पहल इस क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हुई है। अल्लापुर के उत्खनन से कृष्ण लोहित पात्र परंपरा का कोई स्पष्ट स्तर तो नहीं मिला है, परंतु चित्रित धूसर पात्र परंपरा के निचले स्तरों में कृष्ण लोहित पात्र परंपरा का आधिक्य मिलता है। इन पुरास्थलों पर कृष्ण लोहित पात्र परंपरा का आधिक्य मिलता है। इन पुरास्थलों पर कृष्ण लोहित पात्र परंपरा और चित्रित धूसर पात्र परंपरा के पात्र प्रकारों में लगभग 50% तक समानता मिलती है। यही नहीं, थालियां तथा कटोरे दोनों ही पात्र परंपराओं में समान रूप से मिलते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा का उद्भव स्थानीय कृष्ण लोहित पात्र परंपरा से हुआ हो। पृष्ठ संख्या 523। चित्रित धूसर पात्र परंपरा और आर्य। भारतीय पुरातत्व में चित्रित धूसर पात्र परंपरा को विशिष्ट स्थान देने का एक प्रमुख कारण यह है कि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने इसे महाभारत युग तथा भारत में आर्यों के संचरण से जोड़ने का प्रयास किया है। हस्तिनापुर, बरनावा, मथुरा, अहिच्छत्र, कांपिल्य, तिलपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र और विराटनगर आदि महाभारत में उल्लिखित अथवा किंवदंतियों के माध्यम से महाभारत के कथानक से जुड़े हुए पुरास्थल हैं, जिनके निचले स्तरों से इस प्रकार के पात्रखंड मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी पुरास्थल एक ही संस्कृति से संबंधित थे। इस पात्र परंपरा का मुख्य क्षेत्र गंगा तथा सतलज के बीच का भूभाग प्रतीत होता है। यही प्राचीन मध्य देश है, जिसकी पवित्रता की प्रशंसा आर्यों ने मुक्त कंठ से की है। हस्तिनापुर के उत्खनन से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के स्तरों से घोड़े की हड्डियां मिली है। अश्व वैदिक आर्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण पशु ही नहीं अपितु एक द्रुतगामी वाहन भी था। अश्व की अस्थियां आर्यों के साथ इसका संबंध जोड़ने में एक अन्य सहायक कड़ी मानी जा सकती है। यूनान और ईरान के कतिपय पुरास्थलों से इस तरह के पात्रखंडों के मिलने के कारण चित्रित धूसर पात्र परंपरा को आर्य भाषा भाषी लोगों से संबंधित किया जा सकता है। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में आर्य भाषा भाषी लोगों के विद्यमान होने से इस उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है। बीबी लाल इस पात्र परंपरा का संबंध ऋग्वैदिक आर्यों से जोड़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की क्रीड़ा स्थली सप्त सैंधव क्षेत्र था। ऋग्वेद में सिंधु, वितस्ता, झेलम, असिकनी, चिनाव, परुष्णी, रावी, बिपाश, ब्यास, सुतुद्री, सतलज और सरस्वती आदि नदियों का अनेक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता के अंतः साक्ष्यों से विदित होता है कि वैदिक आर्य इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित थे। यदि ऋग्वैदिक आर्यों से यह पात्र परंपरा संबंधित होती तो इसके साक्ष्य अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में मिलने चाहिए। इसके अतिरिक्त ईरान तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों से भी ऐसे पात्र लगभग नहीं मिले हैं। चित्रित धूसर पात्र परंपरा का प्रसार ऊपरी गंगा घाटी में विशेष रूप से था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक आर्य ऊपरी गंगा घाटी से भलीभांति परिचित नहीं थे, क्योंकि ऋग्वेद में केवल दो बार स्पष्ट रूप से यमुना नदी का और एक बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। भाषा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि भारत में आर्य भाषा भाषी लोग कम से कम दो शाखाओं में आए। चित्रित धूसर पात्र परंपरा का संबंध परवर्ती शाखा के आर्यों से जोड़ा जा सकता है, जिन्हें सामान्यतः उत्तर वैदिक काल के आर्य कहा जाता है। उत्तर वैदिक वाङ्मय की यजुस, शाम तथा अथर्वण की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में मध्य देश का गुणगान किया गया है। मध्य देश को ही सामान्यतः भूगोलवेत्ता ऊपरी पृष्ठ संख्या 524 गंगा घाटी कहते हैं। इस क्षेत्र में चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित बहुसंख्यक पुरास्थल विद्यमान हैं। परवर्ती सिंधु सभ्यता तथा चित्रित धूसर पात्र परंपरा। 20वीं शताब्दी के 80 के दशक में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित भगवानपुरा, पंजाब के जालंधर जिले में स्थित दधेरी तथा जम्मू कश्मीर प्रांत के जम्मू क्षेत्र में स्थित मांडा नामक पुरास्थलों के उत्खननों से चित्रित धूसर संस्कृति के संबंध में कुछ सर्वथा नवीन जानकारी मिली है। रेखा मानचित्र 5 भगवानपुरा एवं अन्य पुरास्थल, सौजन्य जेपी जोशी 1993। इन पुरास्थलों के जगतपति जोशी द्वारा संपन्न कराए गए अन्वेषणों से परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, लेट हड़प्पन तथा चित्रित धूसर पात्र परंपरा के बीच परिव्याप्ति अथवा आच्छादन ओवरलैपिंग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पृष्ठ संख्या 525। दूसरे शब्दों में परवर्ती हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित धूसर पात्र परंपरा के बीच समय के अंतराल न होने की सूचना मिलती है। इन पुरास्थलों के उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के प्रचलन काल में ही चित्रित धूसर पात्र परंपरा अस्तित्व में आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में इन दोनों पात्र परंपराओं के पारस्परिक संबंधों को नए सिरे से पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। इन दोनों संस्कृतियों के तिथि क्रम को लेकर कुछ नए विवाद उठ खड़े हुए हैं। अभी तक यह समझा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति लगभग 1500 या 1700 ईसा पूर्व में हुई तथा चित्रित धूसर पात्र परंपरा का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। यह बात समझ में भी आती है कि है, क्योंकि दोनों के बीच समय का स्पष्ट व्यवधान है। परंतु नए साक्ष्यों को विश्वसनीय मानने पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि या तो हड़प्पा सभ्यता 1500 या 1700 ईसा पूर्व के बाद भी जीवित रही, अथवा चित्रित धूसर पात्र परंपरा ही 1000 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। यह आशा की जा सकती है कि हरियाणा, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित पुरास्थलों की रेडियो कार्बन तिथियां आने पर इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। हरियाणा तथा पंजाब आदि के क्षेत्रों में जेपी जोशी की देखरेख में जो अन्वेषण कार्य हुए हैं, उनसे यह जानकारी मिली है कि अमृतसर के पश्चिम में स्थित पुरास्थलों पर जो पात्र परंपरा मिलती है वह केवल सलेटी रंग की है। उसमें चित्रण का अभाव है, लेकिन अमृतसर के उत्तर पूर्व में वह चित्रित हो जाती है। इससे यह परिलक्षित होता है कि आरंभ में यह पात्र परंपरा चित्रित नहीं थी, किंतु स्थानीय चित्रित मृदभांड संस्कृति के संपर्क में आने पर इस पात्र परंपरा के बर्तनों के ऊपर चित्रण अभिप्रायों का निरूपण होने लगा। इन क्षेत्रों के अन्वेषण तथा भगवानपुरा के उत्खनन से चित्रित दूसर पात्र परंपरा के तीन चरण दृष्टिगत होते हैं। प्रथम चरण में भवनों का निर्माण बांस बल्लियों की दीवारें बनाकर किया गया था, जबकि द्वितीय चरण में मिट्टी के दीवारें बनाई जाने लगी थी। तृतीय एवं अंतिम चरण में भट्टे में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण कार्य में प्रारंभ हो गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवानपुरा के तीनों चरणों में लोहे के उपयोग की कोई सूचना नहीं मिली है, अतः चित्रित धूसर पात्र परंपरा को दो वर्गों में विभाजित करना होगा। एक लौह उपकरण रहित चित्रित धूसर पात्र परंपरा, दो लौह उपकरण युक्त चित्रित धूसर पात्र परंपरा। हरियाणा, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में स्थित पुरास्थलों की खोज से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के विषय में जो नई संभावनाएं उठ खड़ी हुई हैं, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए उपलब्ध प्रमाणों से अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता है। उपलब्ध साक्ष्य चित्रित धूसर पात्र परंपरा तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच सह अस्तित्व एवं समकालीनता की सूचनाएं देते हैं। भविष्य के अनुसंधान ही बताएंगे कि इन संभावनाओं में कितना बल है। पृष्ठ संख्या 526, चित्रित धूसर पात्र परंपरा की संस्कृति। ऊपरी गंगा घाटी के पुरातत्व में चित्रित धूसर पात्र परंपरा का अत्यंत विशेष स्थान है। प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता बीवी लाल ने जब इसका संबंध महाभारत के कथानक से संबंधित पुरास्थलों से जोड़ने का आग्रह किया, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय पुरातत्व एक जीवंत लोक है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित कई प्रमुख पुरास्थलों का उत्खनन अभी तक हो चुका है। इनमें से विशेष उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, कौशाम्बी, हरियाणा के भगवानपुरा, पंजाब के रोपड़ और राजस्थान के उत्खननों के फलस्वरूप चित्रित धूसर पात्र परंपरा की संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इन उत्खननों से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के निर्माताओं की संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर समुचित प्रकाश पड़ता है। कुल मिलाकर यह संस्कृति एक विकसित ग्राम्य जीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। लौह उपकरण प्रारंभ में हस्तिनापुर तथा रोपड़ के उत्खननों से चित्रित धूसर संस्कृति के धरातल से लोहे के उपकरणों के एक के न मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन पात्र परंपरा कहा गया था, लेकिन बाद में आलमगीरपुर, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, चित्र छह, अतरंजी खेड़ा, लौह उपकरण, सौजन्य, आरसीगढ़ 1983, अतरंजी खेड़ा, नूह, अल्लापुर आदि सभी उत्खनित पुरास्थलों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अब इसको लौह युगीन संस्कृति स्वीकार किया जाता है। प्रमुख लौह उपकरणों में बाड़ फलक, कुल्हाड़ियाँ, सरणी, सुइयाँ और किले आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा आदि पुरास्थलों पर लौह धातुमल, आयरन स्लेज भी मिले हैं। पृष्ठ संख्या 527, कृषि। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के निर्माताओं का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। हस्तिनापुर के उत्खनन से धान के अधजले दाने प्राप्त हुए हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग धान की खेती करते थे तथा चावल उनका प्रमुख खाद्यान्न था। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित नूह नामक पुरास्थल की खुदाई से जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। गेहूं की खेती के संबंध में कोई निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन इस संस्कृति के किसी भी पुरास्थल की खुदाई से अभी तक हल की फाल का नमूना नहीं मिला है। अतः इनके खेती करने के ढंग के विषय में किसी प्रकार का निश्चयात्मक मत व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पशुपालन। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोग गाय बैल के अतिरिक्त घोड़े को भी पालते थे, क्योंकि हस्तिनापुर के उत्खनन से पालतू घोड़ों की हड्डियां मिली हैं। परिवहन का द्रुतगामी वाहन होने के कारण अश्व का प्राचीन काल में बहुत अधिक महत्व था। पालतू पशुओं का महत्व संभवतः कृषि कार्यों के अतिरिक्त दूध तथा मांस के लिए भी था। खाद्य सामग्री। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोगों के चावल और जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। इनके अलावा वे लोग गोमांस, सुकर मांस एवं हिरण का मांस भी खाते थे, क्योंकि हस्तिनापुर के उत्खनन से इन पशुओं की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन हड्डियों को चीर कर मज्जा निकाल कर खाया गया है। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से भोजन बनाने के लिए रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली संडनी तथा चिमटे के नमूने प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त वहां से सामुदायिक चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के भोजनालय से संबंधित थाली तथा कटोरे आदि बर्तन भी इस संदर्भ में भोज्य सामग्री संबंधी विशिष्ट आदत के परिचायक है। चित्र सात। अतरंजी खेड़ा लोहे की नाकेदार सुई एवं अन्य लौह उपकरण सौजन्य आरसी गौड़ 1983 पृष्ठ संख्या 528। वस्त्र तथा आभूषण। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से मिट्टी के बर्तनों पर सूती कपड़े की छाप लगी हुई मिली है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि इस काल में सूती वस्त्रों का निर्माण तथा प्रयोग होता था। हस्तिनापुर और अल्लापुर की खुदाइयों से लोहे की बनी हुई नाकेदार सुइयां मिली हैं। इनसे वस्त्रों के सिलने का संकेत मिलता है। स्त्री तथा पुरुष दोनों को वस्त्राभूषणों का शौक था। विभिन्न प्रकार के मनके तथा ताबीजे मिली हैं। तांबे तथा कांच की बनी हुई चूड़ियां चित्रित धूसर पात्र परंपरा के प्रायः अधिकांश पुरास्थलों से प्राप्त हुई हैं। भवन। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अधिकांश पुरास्थलों से अभी तक पकी हुई ईंटों के नमूने प्राप्त नहीं हुए हैं। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित भगवानपुरा का पुरास्थल इसका एकमात्र अपवाद है, जहाँ पर पकी ईंटों के भवनों आदि के कुछ पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए अधिकांश विद्वानों का अनुमान है कि चित्र आठ, अतरंजी खेड़ा चूल्हा सौजन्य आरसी गढ़ 1983, ये लोग मिट्टी के बने हुए कच्चे भवनों में रहते थे। कभी कभी मकानों की दीवारें जमीन में बांस बल्ली गाड़कर बनाई जाती थी। बांस बल्ली से बने मकानों को बाहर तथा भीतर दोनों ओर से मिट्टी के छाप लीप कर अपेक्षाकृत आरामदायक बनाने का प्रयास किया जाता था। उत्खनन से इस प्रकार की छपाई लिपाई में प्रयुक्त मिट्टी के जो टुकड़े मिलते हैं उनमें सरकंडों की छाप मिलती है। जमीन में लट्ठे गाड़ने के संकेत उत्खनन के दौरान स्तंभ गर्तों के रूप में मिलते हैं। घरों के छादन संभवतः घास फूस के होते थे। अतरंजी खेड़ा से एक घर के अंदर एक चूल्हा मिला है। घरों से प्राप्त विविध पुरातात्विक सामग्री में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, लोहे, तांबे आदि के बने औजार प्रमुख पुरावशेष हैं। चित्र संख्या 529। व्यापार तथा वाणिज्य। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोगों का आर्थिक जीवन संभवतः बहुत जटिल नहीं था। अभी तक चित्रित धूसर पात्र परंपरा के किसी भी पुरास्थल से सिक्कों के प्रचलन का प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इनका जीवन वस्तु विनिमय या अदल बदल की आर्थिक प्रथा पर आधारित था। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त पत्थर के कतिपय गोल टुकड़ों को उत्खाता ने बात बतलाया है। इस बात की संभावना है कि इनका प्रयोग अनाज आदि को तौलने के लिए किया जाता रहा हो। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के निवासियों के बीच आपस में किसी न किसी प्रकार का सांस्कृतिक संपर्क अवश्य था, क्योंकि मिट्टी तथा माणिक्य के बने एक ही प्रकार के मन के विभिन्न पुरास्थलों से मिले हैं। मन को आदि की समरूपता के आधार पर आपस में किसी न किसी प्रकार के व्यापारिक संपर्क का अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक दशा। चित्रित धूसर पात्र परंपरा की संस्कृति के धार्मिक जीवन के विषय में बहुत ही कम जानकारी है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, इसके संबंध में भगवान पुरा को छोड़कर अन्य कहीं से कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। भगवान पुरा में शव विसर्जन के लिए दफनाने की प्रथा थी। गाय, बैल, घोड़े, भैंस आदि चौपायों तथा चिड़ियों की मृत मूर्तियां, चित्र नौ, अतरंजी खेड़ा, मृत मूर्तियां एवं वस्तु अन्य वस्तुएं सौजन्य आरसी गढ़ 1983 पृष्ठ संख्या 830 हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अल्लापुर, नोह तथा सरदारगढ़ आदि पुरास्थलों से मिली हैं। इन मूर्तियों के धार्मिक प्रयोजन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी तक खलौवा तथा अतरंजी खेड़ा के पुरास्थलों के अपवादों को छोड़कर प्रायः किसी भी अन्य पुरास्थल से मिट्टी अथवा पत्थर की मानव मूर्तियाँ नहीं मिली है। खलौवा और अतरंजी खेड़ा से मिट्टी की हस्तनिर्मित मानव मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन इन मूर्तियों का क्या प्रयोजन था यह कहना कठिन है। चित्रित धूसर संस्कृति के उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा के लोग ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसको हम विकसित ग्राम्य जीवन कह सकते हैं। आगे घटित होने वाली गंगा घाटी की द्वितीय नगरी क्रांति के लिए इसने आधार प्रदान किया। नगरीय करण उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा की देन है। दुआब के घने जंगलों की लोहे के उपकरणों की सहायता से साफ करके चित्रित धूसर संस्कृति के लोगों ने ऊपरी गंगा घाटी में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में धीरे धीरे विस्तार किया, लेकिन महाभारत आदि साहित्यिक ग्रंथों में तत्कालीन जीवन की जो झांकी अंकित है, उस प्रकार के पुरावशेष अभी तक चित्रित धूसर पात्र परंपरा के किसी भी पुरास्थल से नहीं प्राप्त हुए हैं।